Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है। इस बात में बहुत सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सक्सेस के पीछे भागते भागते किसी भी कामयाबी को हासिल करने की राह पर चलने के लिए भूल जाते हैं कि मन की शांति को स्टेबलाइज रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास मन की शांति है तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
डॉक्टर साहब, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से मन की स्थिति बहुत ज़्यादा अगर अनस्टेबल हो जाती है तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मन ये एक ऐसा पंछी है जिसे अगर सही ढंग से रखा ना जाए तो वो मुरझा जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी खुशी गायब हो जाएगी। ऐसे में जब हम बात करते हैं यूथ की, जो कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट द एज ग्रुप ऑफ 35 to 40, ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहाँ पर रिश्ते बनते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हमारा मन स्टेबल रहे?
देखिए, आपने खुशी की बात की, मन की बात की, विचारों की बात की, और जो प्रोग्राम का हमारे नाम है ज़िंदगी बने आसान, कई बार ख़ास तौर पे जब हम उन लोगों को देखते हैं जो बहुत मानसिक रूप से कष्ट में होते हैं, और ये प्रश्न मन में ज़रूर आता है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हमने क्यों बना ली कि उसको आसान बनाने के लिए हमें बात करने की ज़रूरत है।
करेक्ट।
असल में कोई भी थॉट अपने आप में मुश्किल या आसान नहीं होता। उसको जो देखने का हमारा नज़रिया है वो हमें मुश्किल या आसान के रूप में देखने पे मजबूर कर देता। उसमें जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारी अब तक सोच रही है, और दूसरों से या अपने आप से या अपने जीवन से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को सही या बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है वो रोज़ एक तरह का काम कर रहा है, चाहे वो साइकिल में पंक्चर ही क्यों ना लगा रहा, उसके लिए बहुत आसान चीज़ है। लेकिन बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी शायद अगर वो खुद कोशिश करने लगे तो साइकिल में पंक्चर नहीं लगा पाएंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें की, करने के बाद सक्सेसफुल महसूस किया, और अब जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम कितना अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। अगर उस नजरिए से देखेंगे तो जिंदगी मुश्किल नहीं लगेगी। एक और बहुत बड़ी मुश्किल आती है कि हम जो पहले हो चुका पूरी जिंदगी और जो पूरी जिंदगी आगे होना है, इन दोनों पे इतने फोकस्ड रहते हैं कि अभी जो एक बहुत छोटा सा समय है उस पर ना फोकस कर पाते हैं और ना उसमें जो प्राप्ति हो रही है उसे महसूस कर पाते हैं। तो जो जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आई या हमने देखी और आगे जो हो सकती हैं उनके बारे में सोच के हम सोचते हैं कि शायद ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। जो आपने 35 to 40 एज ग्रुप कहा, जो एक तरह से एंड ऑफ यूथ कहते हैं,
करेक्ट,
हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आप चाहें तो आप 90 पे भी यूथफुल महसूस कर सकते हैं।
इट्स ऑल इन द माइंड। Absolutely.
और अगर आप परेशान महसूस करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो आप 10 साल की उम्र में भी ऐसा कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर हम जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को देखें तो इस पड़ाव पे जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत सेट हो चुका है। उसमें आप किसी खास मुकाम तक भी पहुँच गए हैं। इस समय में आपका परिवार भी बाय एंड लार्ज सेट हो चुका है।
करेक्ट।
अगर शादी होनी है तो हो चुकी है, बच्चे भी एक दो हो चुके हैं। काम में भी आपको, जो उस काम में आप 10-15-20 साल से अब कर रहे हैं, उसमें आपको कठिनाई पाइन लाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो भी समय है जबकि हमने क्या पाया इसका आंकलन लोग करते हैं,
पूरी जिंदगी में क्या पाया,
पूरी जिंदगी में क्या पाया और क्या मेरी जिंदगी की डायरेक्शन यही रहे। इस तरह के कई प्रश्न उठने शुरू होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड लाइफ टाइम, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है और कई बार मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से भी इससे आने वाले समय को माना जाता है, जिसका मतलब है कि आपने जो जो पाने की इच्छाएं रखी वो मोर और लेस पूरी हो गई। अब आगे पाने को अगर आप चाहें तो नए मकान ला सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको पाने के लिए अब और कुछ खास है नहीं और अभी उसी तरह की रोज सेम ढर्रे पे जीवन चल रहा है। मैरिज में जो नयापन होता है, रिश्तों में जो आप ढूंढते हैं
जी,
वो एक तरह से रूटीन बन जाता है, तो उसमें कुछ नयापन महसूस नहीं होता। तो लाइफ कई लोगों के लिए बहुत ठहरी सी महसूस हो सकती है और वहाँ पे जीवन का सही मूल्य क्या है, जीवन का सही मतलब क्या है, जीवन जीने की कला क्या है और किस प्रकार से हर क्षण जो आपने कहा कि मन की शांति और खुशी उसे हम पा सकते हैं, इसके बारे में कई बार बातें चलती हैं। प्रश्नों में कुछ लोग घिर के रह जाते हैं और कुछ लोग इसी समय में उससे ऊपर उभर कर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, मैंने देखा है खास करके जब ये जो एज ग्रुप है, खास करके उन लोगों ने एक आधी ज़िंदगी जी ली होती है और आधी ज़िंदगी बाकी होती है, कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ पर इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस। और ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है, जैसे आपने सही कहा, कि कोई गोल जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। जब भी ज़िंदगी में गोल पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं अब नेक्स्ट क्या। ऐसे में उन लोगों के लिए कौन से ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना ज़रूरी है जिससे वो खुद को और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करके और भी खुशी से आगे की ज़िंदगी बिताएं।
देखिए, एक्चुअली जो गोल्स हम अपनी ज़िंदगी में तय करते हैं कई बार वो बड़े फाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत छोटे गोल्स होते हैं। एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक स्टेबल जॉब हो जाए, एक बच्चा हो जाए, इतनी सैलरी हो जाए, तो वो सारे गोल्स जो हैं वो हमसे जुड़े होते हैं, वो हद के गोल्स हैं। जब वो हद के गोल मिल जाते हैं तो हमें और ऊंचे गोल्स की या तो ज़रूरत पड़ती है या बेहद के गोल्स की ज़रूरत पड़ती है। और बेहद के गोल्स हमारे या अपने परिवार से सीमित नहीं रह सकते, वो समाज या उससे ऊपर भी पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो वो गोल्स फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मुश्किल क्या आती है कि आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ चाहूँ दूसरों के लिए करना तो क्या वापस दूसरे लोग मेरे लिए करेंगे।
करेक्ट।
अगर मैं परिवार से अगर करना शुरू करें कि, और इस चीज़ पे कई बार घरों में बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए या इवन बच्चों के लिए या हस्बैंड या वाइफ के लिए ये किया, मुझे क्या मिला, तो आंकलन होना शुरू हो जाता है रिश्तों में भी।
करेक्ट।
तो वो फिर हद के रिश्तों में आप हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कई बार फैमिलीज के अंदर
जी
कई बार झगड़े, कई बार किसी और बाहरी व्यक्ति का आ जाना, चाहे संबंधों के रूप में चाहे फ्रेंड्स के रूप में। हम ये भी देखते हैं कि इस समय में लोग अपने फ्रेंड्स से, कुलीग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रादर देन फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि बहुत समय जो है वो काम पे बीतता है।
करेक्ट।
और उस वजह से, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो फैमिली टाइम है या अस टाइम है वो बहुत कम होता जा रहा है फैमिलीज के अंदर, तो उस कारण से क्या क्या हो रहा है कई बार व्यक्ति को वो भी नहीं पता होता अपनी फैमिली के बारे में।
बिल्कुल।
और फैमिली कटना शुरू हो जाती है और उसी कारण से वो जो संबंध में मधुरता या एक खुशी वो ना होने के कारण व्यक्ति उसे बाहर के संबंधों में या बाहर के रिश्तों में ढूंढता है। वहाँ पे मुश्किलें और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, खोखलापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर इंसान ये देखना शुरू करे कि मेरे व्यक्तिगत समय में जो मेरे करीब के लोग हैं, खासतौर पे फैमिली से ही अगर शुरू करें, उनके लिए मैं कितना सोचता हूँ, मैं कितना समय देता हूँ।
ओके।
सेकंड कि किस प्रकार से जो मेरे गोल्स हैं, चाहे हद के भी गोल्स हैं, उसमें मैं दूसरों को साथ में लेके कितना चलता हूँ। क्योंकि अगर आप अकेले चल रहे हैं तो दूसरे या तो पीछे छूट जाएंगे या आपसे कट जाएंगे।
बिल्कुल।
और वहां पे इसीलिए कई बार पुल्स एंड पुशेस होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे हम कुछ बहुत ज्यादा बड़ा भी करना चाहें, लेकिन परिवार को अगर लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनका जो समय है वो उनको नहीं मिल पा रहा, या जितना प्रेम उनके हिस्से में है वो नहीं मिल पा रहा, या जितनी खुशी एक फैमिली मिलके महसूस कर सकती है वो नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे वो उसको गोल से पीछे भी खींचने की कोशिश करते हैं।
करेक्ट।
ताकि अपने लिए उनको समय और खुशी मिल सके।
हाँ, ये देखा गया है खास करके उन लोगों का जिनकी वाइफ्स हैं वो आर हाउसवाइफ्स। अगर वाइफ वर्किंग है तो कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों वर्किंग हैं, दोनों बाहर जाते हैं, दोनों एक्सपोजर से अपने आप को इन्फ्लुएंस करवाते हैं कई बार। तो ऐसे में जब घर पे लौटते हैं तो उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती है एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो वही थके मांदे खाना खा करके सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जो एक क्वालिटी टाइम है वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं वो क्लैशेस होते हैं।
जी, मैं एक्चुअली उस समय की वेट कर रहा हूँ जब समाज में ज्यादा हाउस हस्बैंड्स होंगे। क्योंकि देखिए, रोल्स जो हैं
जी,
ये हमने ही बनाए हैं समाज में। अगर बहुत ज्यादा दूर भी ना जाए, आज से अगर 15-20 वर्ष पहले देखें, और अगर 30 वर्ष पहले देखें, तो ये रोल्स डिफाइंड थे और सबने मान लिया था कि यही रोल्स हैं।
करेक्ट।
सबने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि महिलाएं भी काम करने में उतने ही सक्षम हैं, शायद ज़्यादा ही अच्छा कर पाती हैं, और एक काम वो पुरुषों के मुकाबले में कर सकती हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, वो है बच्चे पैदा करना। तो सिर्फ उसके सिवा बाकी चीज़ें तो पुरुषों और महिलाओं में एक प्रकार की हो सकती हैं। तो अगर ये जो रोल डेफिनेशंस हैं, ये जो कि अब बदल रही हैं काफ़ी हद तक, अगर कुछ हद तक वो भी एक्सेप्ट कर ली जाए कि व्यक्ति बच्चे तो नहीं पैदा कर सकता, पाल तो सकता, घर का ध्यान तो रख सकता, और बाहर की कंट्रीज में कुछ और कारणों से, जहाँ पे कि आपको सपोर्ट स्टाफ ज़्यादा नहीं मिलता, या इकोनॉमिक कारणों से दोनों को काम करना ज़रूरी हो जाता है, जब वैसा होता है तो हम दोनों चीज़ें करनी सीख जाते हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं है।
ट्रू।
हर काम महत्वपूर्ण है, और अगर कोशिश की जाए तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। महिलाएं बाहर जाके काम करना सीख सकती हैं, पुरुष घर के काम करना सीख सकते हैं।
ट्रू।
तो अगर वैसा होना शुरू हो जाता है तो ये जो अभी समाज में एक मैं कहूँगा कि ऊंचाई निचाई का जो सोचा जाता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से महिलाओं को इज्जत मिलने की वजह से उनमें जो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। जब इन मूल्यों के साथ
जी
एक परिवार चलता है और परिवार के सब व्यक्ति चलते हैं, तो उस कारण से जो एक दूसरे के प्रति इज्जत है और एक दूसरे को सुख दे पाने की इच्छा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब वैसा होना शुरू होता है तो स्वतः ही इंसान वहाँ पे ज्यादा समय बिताना चाहता है, फिर मांगने की जरूरत नहीं होती, वो व्यक्ति खुद अपनी स्वेच्छा से ये करना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे जब होता है तो फिर संवाद होने शुरू हो जाते हैं।
संवाद
मतलब एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना। देखिए, जैसे हम एक दूसरे के साथ इस समय बात कर रहे हैं
जी,
बहुत कम जगहें रह गई हैं खासतौर पे परिवारों में कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे सुनता है।
ओके।
अनफॉर्चुनेटली कई बार ध्यान इधर है लेकिन मन कहीं और चल रहा है, या अनफॉर्चुनेटली अब तो और भी ज्यादा हो रहा है कि आपकी आंखें वहां है लेकिन ध्यान मोबाइल के ऊपर है या लैपटॉप के ऊपर है, टेलीविजन भी सामने चल रहा है, बातचीत भी इधर चल रही है, तो आप उस व्यक्ति को ये महसूस ही नहीं होने देते कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, जो वो कह रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
करेक्ट।
तो जब वो होना शुरू होता है तो फिर परिवारों में, खासतौर पे जिसको मिड लाइफ या अधेड़ावस्था कहते हैं, उसके अंदर एक नए प्रकार का गोल बनना शुरू होता है। फिर वो ये नहीं कि एक रिलेशनशिप थी, मैरिज हुई, वो बहुत अच्छा पीरियड था, फिर बच्चे हुए और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद कैसे एक दूसरे के साथ सिर्फ पति पत्नी के रूप में नहीं, लेकिन एक फ्रेंड्स के रूप में या एक टू इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे को समझने की, जानने की, साथ चल पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो होना शुरू होता है तो आज के समय में इंफॉर्मेशन जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा है
जी।
उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में कैसे लगाना है और उससे कैसे खुशी प्राप्त करनी है, एक ही तरह के इंटरेस्ट कैसे रखने हैं। अगर कोई आपस में समय के साथ साथ डिफ़िकल्टीज अराइज हुई हैं, खासतौर पे कुछ ईगो रिलेटेड इश्यूज हैं, या एक को लगता है कि दूसरा बहुत आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, या कहीं कहीं सूक्ष्म सी जेलसीज जो कई बार परिवारों में होती हैं, या बाहर वाले जो आ रहे हैं और संबंधों को ख़राब कर रहे हैं, उन सब को हम बात करके एक कॉमन गोल के रूप में आगे ले जा सकते हैं।
ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मिठास लानी है तो दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, भले वो थोड़ा सा ही समय क्यों ना हो। जब बात कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी ध्यान से एक दूसरे की बात सुने, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाइफ हस्बैंड, दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप पर लागू करता है। कि डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सवाल आया मेरे दिमाग में कि खास करके जो आप एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा टाइम होता है जब थोड़ी बोरिंग लाइफ हो जाती है क्योंकि एडवेंचर नहीं रहता। जैसे जब हम यंग रहते हैं, यूथ की मैं बात करूं, तो उनके लिए उनको गोल सेट करना है, फिर उसके लिए प्रिपेयर करना है, फिर उसके लिए फेलियर्स को फेस करना है, फिर सक्सेस मिलती है, तो ये बहुत कुछ एडवेंचर, हर दिन एक एडवेंचर की तरह लगता है। लेकिन जब आप, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप जॉब में सेटल्ड है, जॉब अच्छा चल रहा है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ रहा है रोज़, तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आ जाती है जो बहुत नेचुरल है, बिकॉज आप शुरुआत दिन की एक ही तरह से करते हैं, अंत भी वैसी करते हैं, वैसे ही महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, किस तरह से एडवेंचर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तभी भी बना कर रख सके, कैसे पॉसिबल है?
शायद ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ या ज़िंदगी मेरे थ्रू जी रही है।
ओके।
अगर मैं एक दिशा देकर उस चीज़ को एंजॉय कर कर आसपास जो हो रहा है उसको सही तरीके से आंकलन करके और फिर गोल्स बना के जी रहा हूँ तो जीने में मज़ा आएगा। अगर मैंने हाथ छोड़ दिए कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे, तो फिर ज़िंदगी मेरे थ्रू जी लेगी लेकिन मैं ज़िंदगी को नहीं जीऊँगा। देखिए, हर रोज़ जब सूरज उगता है
जी,
वो सूरज नया होता, हमें कई बार सूरज ही नहीं पता कि उगता है, हम अपने में खोए इतने होते हैं। हर दिन का टेम्परेचर अलग होता है, पक्षी जो चहचहाते हैं बड़े शहरों में तो शायद आजकल वो भी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जो भी साउंड्स हैं, हर चीज़ ज़िंदगी के सूचक हैं। हमने अपने आप को इन सब चीज़ों से बहुत हटा लिया, हम बहुत ज़्यादा अपने में सिमट गए हैं।
करेक्ट।
और उस सिमटने की वजह से मेरे ज़िंदगी के गोल सिर्फ ये रह गए कि आज कितनी ईमेल्स भेजनी है, किसको क्या जवाब देना है, शाम तक बॉस झाड़े ना, जो काम करना है वो किसी तरह से करके, और मैं ट्रैफिक से लड़के और घर वापस आ रहा हूँ।
करेक्ट।
अगर सिर्फ वही ज़िंदगी है तो हम बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने और आसपास वाले और अपने माहौल के प्रति, प्रकृति के प्रति, जो जो चीज़ें मेरी हो रही हैं आसपास, उनके प्रति संवेदनशील हैं, तो ज़िंदगी हर रोज़ एक नया रूप लेके आती है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, देखिए जो काम हम कर रहे हैं वो काम हम गाना गा के कर रहे हैं यानी खुश होके कर रहे हैं, या उस काम को झेलने के रूप में कर रहे हैं, काम वही रहेगा, लेकिन मैं किस प्रकार से उसको अप्रोच करता हूँ
उस पर
वो बदल जाता
है। करेक्ट।
और जब हम उस रूप से उसको अप्रोच करते हैं तो मेरी एफिशिएंसी स्वतः ही बेटर हो जाती है।
okay.
हाँ, ये नहीं है कि आपको रोज कोई प्रमोशन मिलेगी,
ऑब्वियसली
ये भी नहीं है कि आपको हर महीने पे बढ़ेगी, लेकिन अच्छा काम करने का जो मजा है वही चलाता रहता है। एंड इंसिडेंटली व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि जो व्यक्ति
जी
हर चीज को नए रूप से लेकर और उसमें क्या बेस्ट हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं, दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी मोर सक्सेसफुल।
ओके।
क्योंकि वो सिर्फ एक हद के गोल तक ही पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, वो एक चीज को बेहद से जीने की कोशिश कर रहे।
ओके।
सो देन देयर इज इनोवेशन।
करेक्ट।
जितने भी आप बिजनेसेस देखेंगे जो बढ़े या कोई नई चीज इजाद हुई, उसमें व्यक्ति के जो मन के पुराने सोचने के ढंग थे उनको साइड पे रख के उसने एक नए तरह से चीजों को देखने की कोशिश की।
ओके।
इंसिडेंटली इसको हमारी साइकोलॉजिकल भाषा में लिटरल थिंकिंग कहा जाता है। तो हम किसी चीज को अगर डायरेक्टली देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली देख के उससे जो इनपुट मिल रही है वो वही है जो बाकी सब ने की।
बिल्कुल।
लेकिन अगर उसी चीज को हम एक अलग ढंग से देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, तो उस चीज को करने के, सॉल्व करने के नए तरीके निकल के सामने आते हैं। और हर सिचुएशन में हम इस लेटरल थिंकिंग को अपना सकते हैं।
करेक्ट।
उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये, और ये एक्चुअली हर चीज में अप्लाई हो सकता है, रिश्तों में भी अप्लाई हो सकता है। द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क इज कि मैं ये काम या ये रिश्ता या ये चीज इस प्रकार से रोज कर रहा हूँ, क्या इसको करने का कोई अलग ढंग है।
करेक्ट।
सिंपल थिंग्स जो कई बार बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें से हर किसी का आमतौर पे एक सेट रूटीन बन जाता है, वही सड़क वही रूट, या हमारा अगर कुछ लोगों को ईमेल लिखने का भी तरीका है तो वही सेट उसे में कट एंड पेस्ट करके नाम बदल दिया और वो कर दिया।
Correct.
अगर हम हर चीज को एक नए रूप से, अगर मान लीजिए आपने एक जगह जाना है तो एक नया रूट लिया हमने, या हम जिस रूट से रोज गुजरते हैं उस जगह पे थोड़ा थोड़ा समय लेकर आसपास क्या है हमने ये देखने की कोशिश की।
ओके।
तो जब वो होता है तो माइंड जो है वो एक पुराने ढर्रे से हटकर नए तरीके अपनाना शुरू करता है।
दिस इज सो ट्रू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में मैंने कई सारी बातें जानी। कहीं ना कहीं हमने एक ऐसे एज ग्रुप को टारगेट किया जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी भले कितने भी मोनोटोनस क्यों ना हो, उसे नज़रिया अगर बदल दिया जाए, अगर उनके देखने का पर्सपेक्टिव बदल दिया जाए तो उनकी लाइफ उन्हें और भी ज़्यादा कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी और एडवेंचर उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर जिंदगी को हम नए नज़रिए से देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक समान होता है, हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर आता है, एक नई किरण लेकर आता है। ये हमारे सोच पर निर्भर करता है कि क्या हम उस नज़रिए को देख पा रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी के बदलाव को हम महसूस कर पा रहे हैं। आज हमने जाना कि अगर ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है तो अपनी पर्सपेक्टिव को सदा फ्रेश रखें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।